जय विष्णुपाद परमहंस ब्रजाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री गौनिता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरिस्ट द असेंबल्ड बेटे हरे कृष्ण ऑल ग्लोरिस्ट द असेंबल्ड बेटे हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांग ऑल ग्लोरी श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक संख्या 8 के ऊपर चर्चा करेंगे। महार्य वस्त्र आभरण कंचुका उष्मीषा भूषिता गोपाः समायु राजन् नाना उपायनं पाण्यय महार्ष वस्त्र आभरण कंचुका उष्मा भूषिता गोपः समायु राजन् नाना उपायनं पानय। बोलिए। कंचुका उष्मीण भूषिता नाना उपायनं प्रणयः। और कोई महार्य वस्त्र आभरण कुंचुका उपस्मिता भूषितं गो नापायन प्राणय। शब्दार्थ महार्य अत्यंत मूल्यवान वस्त्र आभरण कपड़े तथा गहनों से कुंचिका वृंदावन में पहना जाने वाला विशेष वस्त्र अंगरक्षा उष्मिषा पगड़ी से भूषिता उचित तरह सजे, गोपहा सारे ग्वाले, समाययु वहां आए, राजन हे राजन नाना अनेक प्रकार की, उपायना भेंट, प्राणया हाथ में लिए हुए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे राजा परीक्षित, ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कुचक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर तथा अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर वे नंद महाराज के घर आए। तात्पर्य, जब हम देहात के खेतिहर की पुरानी दशा पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि मात्र कृषि उपज तथा गौ की रक्षा के बल पर वह कितना समृद्ध था, किंतु वर्तमान समाज में कृषि की उपेक्षा की जा रही है और गोरक्षा का परित्याग हो चुका है, जिससे खेतिहर की स्थिति दयनीय है और वह फटे पुराने वस्त्र पहने रहता है। प्राचीन भारत और वर्तमान कलिन भारत में यही अंतर है। उग्र कर्म के अंतर्गत उग्र कार्य कलापों द्वारा हम मानव सभ्यता के सुअवसर को खो रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुपिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयिहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखानितं स। नमोम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सभी तो श्रीमद् भागवतम की इस प्रसंग जो है नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट, और इसी अध्याय में नंद सब की वर्णन है, क्योंकि कृष्ण जन्म के बाद जब वसुदेव ने अपने पुत्र को कृष्ण को गोकुल में छोड़े, उसके बाद की प्रसंग है ये, किस प्रकार वहां नंद उत्सव पालन हुआ। तो यहाँ इस अध्याय में किस प्रकार नंदोत्सव के लिए सब गोप गोपियां किस प्रकार तैयार हुए और किस प्रकार धूमधाम से नंदोत्सव का पालन हुआ, और उसके बाद नंद महाराज जो है जाते हैं मथुरा कर कंस को कर देने के लिए, और वहाँ किस प्रकार वसुदेव से उनकी भेंट होता है इस अध्याय में वर्णन है। तो जिस प्रकार हम कुछ ही दिन में इस अध्याय को सुन रहे हैं, और इस ग्रीष्म राम रूप प्रभु बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हैं। तो वो बता रहे थे कि जब भगवान कृष्ण का अवतार वास्तव में द्वापर युग के लिए नहीं हुआ है, ये कलयुग के लोगों के लिए हुआ है। तो भगवान द्वापर में तो अवतरित हुए हैं, और उन्होंने हमें ये शिक्षा दिए हैं कि इस प्रकार कुशी और गोरक्षा जो है महत्वपूर्ण है, और स्वयं इसलिए वो वैश्य कुल में आए और भगवान को, भगवान हितैषी भी है गो और ब्राह्मणों के। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गाय जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है, सर्व देवमय गाव। हमारा शास्त्र कहता है सभी देवता गायों में निवास करते हैं। तो भगवान ने इस धराधाम पे आकर हमें ये कृषि और गोरक्षा के विषय में, क्योंकि वैश्य कुल में आए, और स्वयं भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्मा समाप्त, कि कृषि गोरक्षा और वाणिज्य क्या है, ये वैश्य के कर्म है। तो इसलिए भगवान स्वयं सिखाए हैं किस प्रकार कृषि गोरक्षा होना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण तात्पर्य में यही कृषि और गोरक्षा के बारे में बताया गया है, लेकिन हम आगे हम देखेंगे इसके बारे में, तात्पर्य को बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इस श्लोक में, आज के श्लोक में कहा गया कि जब कृष्ण की जन्म हुआ, कृष्ण जब गोकुल में वसुदेव छोड़ के गए, और यहाँ तक कि पहले के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाल लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किस प्रकार कमेंट करते हैं कि जब वास्तव में भगवान कृष्ण जो है वसुदेव के वहाँ तो जन्म हुए थे, लेकिन उन्होंने नंद महाराज के घर में भी जन्म हुए थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके टीका करते हुए अनेक प्रकार की जुक्ति देते हैं, जुक्ति के माध्यम से, जैसे कल राम रूप भी बता रहे थे कि जो उनके भगवान के नाभि नाल है वो नंद महाराज ने काटा। तो पहले के श्लोक में हम पढ़े थे कि जो जात कर्म संस्कार नंद महाराज ने किए थे, तो इससे पता चलता है कि अनेक तर्क के द्वारा पता चलता है कि कृष्ण भले ही वसुदेव के वहां जन्म लिए थे कंस की कारागार में, और अनेक आचार्य के टीका के अनुसार साथ साथ यहाँ भगवान कृष्ण यहाँ नंद महाराज के घर में भी जन्म हुए, क्योंकि अनेक तर्क देते हुए श्रीमद् भागवतम में ही अनेक श्लोकों का तर्क देते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार जब कृष्ण का नामकरण हुआ, उसी समय जो गर्ग ऋषि, इसी समय वो कहते हैं कि पहले जो आपका पुत्र है, पहले ये वसुदेव का पुत्र हुआ हुआ है। तो इसे पता चलता है कि जो वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म है वो, और नंद महाराज के पुत्र में भिन्नता भी है और भिन्नता भी नहीं है। जय श्री श्री राधारास बिहारी सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान श्री श्री गौर निताय श्री श्री श्रील प्रभुपाद की जय। तो इससे पता चलता है कि अनेक श्लोक के माध्यम से वो तर्क देते हुए कहते हैं कि और जब अष्टभुजा माता जो माया देवी कंस के हाथ से छूट जाता है, वहां भी उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो काल है और कई जन्म ले चुका है। तो इस प्रकार से अनेक तर्क देते हुए वो कहते हैं कि जो वास्तव में नंद महाराज का कृष्ण है, ये जो है जो अष्टभुजा माता जो प्रकट हुए उनके बड़े भाई के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार तात्पर्य में लिखा गया है कि इस प्रकार अनेक तर्क के माध्यम से कृष्ण को जो है नंद महाराज के बेटे के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो पहले जो श्लोक पहला और दूसरा श्लोक की तात्पर्य में वहाँ पर प्रपाद लिखते हैं कि इस प्रकार की जो पचड़े में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं कि क्या हुआ था। तो कहते हैं कि जो भी हो हम इस पचड़े में नहीं पढ़कर यह मान सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उसी तरह उचित था, इसलिए यह उत्सव हर जगह नंद उत्सव कहलाता है। तो आगे जाकर जब नंद उत्सव का अर्थ है जात कर्म संस्कार, तो जात कर्म संस्कार के माध्यम से अनेक प्रकार के नंद महाराज ने, आप तीसरे श्लोक आदि में देखे होंगे, उन्होंने अनेक प्रकार के दान धर्म किए, अनेक ब्राह्मणों को बुलाए। और कहा जाता है जब भगवान के जन्म का पूरे ब्रज में पता चला, ब्रजमंडल में, तो सभी ब्रजवासी एकत्र हो गए। और नंद महाराज राजा थे, तो राजा के दरबार में अनेक प्रकार के स्तुतिकार होते, बंदे होते हैं जो वंदना करते हैं राजा की। तो इसी प्रकार जब सबको पता चला, कुछ सब एकत्र हो गए और सब नंद महाराज की कुल की गोत्र की नाम लेकर उनकी महिमा गाने लगे, बंदीजन वंदना करने लगे, और जितने वाद्यकार थे बाजा तुरी भेरी सब नगाड़े बजने लगा। तो पूरी तरह से धूमधाम से नंदोत्सव का पालन हुआ और भगवान की नंद महोत्सव। आज भी हम जन्माष्टमी जो है वो भी क्या है, भगवान के जन्मोत्सव है, तो वही नंदोत्सव हम नेक्स्ट दिन पालन करके फिस्ट खाते हैं। तो वहां भी जहाँ उत्सव होता है वहां अवश्य है कि फिस्ट होता है। तो नंद महाराज के वहां जैसे हम भी उत्सव करते हैं, हमारा भी अंतिम कहाँ खत्म होता है, फिस्ट से। तो उत्सव में क्या होता है, तो गुणगान होता है, कथा नृत्य कीर्तन ये सब होता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में कथा आता है और चैतन्य भागवत में भी वर्णन है कि वहां कहते हैं कि देवता लोग श्रीमद् भागवतम में प्रार्थना करते हैं कि वो भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, क्योंकि भारत भूमि ऐसा है कि यहाँ हर दिन अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। तो जब जम्बूद्वीप का वर्णन आता है वहां देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं। तो चैतन्य भागवत में फिर आता है, कहते हैं कि जो खाने तुम्हारा कथा महोत्सव नहीं, ब्रह्म लोक हो ले भी ताहा नहीं चाहिए। कहते हैं देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान जहां तुम्हारा जो खाने तुम्हारा नहीं जसेर प्रचार, जहां नहीं वैष्णव अवतार, कि जहां भगवान आपकी कथाओं का चर्चा नहीं होता है और जहां आपकी भक्तों का अवतार नहीं है। और कहते हैं जथा नहीं तुम्हार महोत्सव, जहां तुम्हारा महोत्सव नहीं होता है, तुम्हारे यात्रा महोत्सव, जखाने तुम्हारा यात्रा महोत्सव नहीं, ब्रह्म लोक होइले ताहा नहीं चाहे। कि ऐसे ब्रह्मा के लोक होने के बाद भी ऐसे हम नहीं चाहते, क्योंकि भगवान की कथा कीर्तन जो है यहाँ ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम की महिमा में कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम वार्ता सुरानाम अपि दुर्लभम, कि भगवान की जो कथा है देवताओं को भी दुर्लभ है। यहाँ तक कि जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा प्रारंभ किया, तभी देवता लोग अमृत कलश लेके आ गए और कहे ये अमृत परीक्षित को पिला दो और हमें कथा अमृत दो। तो इससे पता चलता है देवलोक में भी इस प्रकार के महोत्सव दुर्लभ है। ए जथा जखाने तुम्हारा नहीं जसेर प्रचार, कि भगवान की जस की गुणगान। और जब महोत्सव होता है तो क्या होता है, जब हमारा मंदिर में अनेक प्रकार के उत्सव होता है, गौर पूर्णिमा होता है, कृष्ण जन्माष्टमी होता है, राधाष्टमी होता है, दिन कहां से शुरू होता है, भगवान की कथा। ऐसे तो हमारा मंदिर में रोज कथा होता है, लेकिन खास कथा होता है उस दिन भगवान की जन्मोत्सव की कथा होता है, भगवान की जस गान होता है और इस प्रकार के भगवान की गुणगान किया जाता है, कीर्तन होता है, भगवान के नाम कीर्तन होता है। और इस प्रकार अनेक प्रकार से इसी प्रकार जो ये महोत्सव, जो भगवान के जुड़े हुए महोत्सव है, हमारे भक्ति को बढ़ाता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है उसको बढ़ाने लगता है। तो महोत्सव, ये यात्रा, ये सब बहुत जरूरी है और ये भक्ति का एक अंग ही है। तो बाहर लोग भी महोत्सव करते हैं लेकिन उनमें भगवान नहीं होते, उनका महोत्सव बाद में दुख में परिवर्तन हो जाता है, दारू पी के फिर रोड में सोते हैं, लेकिन हमारा भक्त लोग चरणामृत पी के आनंद लेते, नाच नृत्य कीर्तन करते हैं, यही अंतर है। इसलिए महोत्सव तो सब जगह है, सब महोत्सव किसको पसंद नहीं है, महोत्सव में सब आनंददायक चीज होता है। तो भगवान की जन्म लेने पर, भगवान की जब अवतार हुआ तो गोकुल में भी नंद महाराज के नंदोत्सव मनाए, तो उसी नंदोत्सव में अनेक प्रकार की लोग, पूरा ब्रजवासी, पूरे ब्रज 84 कोस से लोग, जब नंद महाराज, क्योंकि नंद महाराज ब्रज के राजा थे, तो राजा की राजकुमार जब पैदा हुआ तो प्रजा को भविष्य का राजा मिला, तो उनके मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो उन्होंने अपने राजकुमार के लिए अनेक प्रकार के हाथ में बहुत सुंदर मूल्यवान, आज के श्लोक में बताया गया है, वस्तु लेकर, और खुद को कहते हैं महर्ष मतलब महंगे कपड़े, तो महंगे महंगे कपड़े पहने और वस्त्र आभरणम, अनेक प्रकार की वस्त्र को धारण किए, और ऐसे सस्ता वस्त्र नहीं है, थर्ड क्लास, आज के जो है थर्ड क्लास वस्त्र है हम कपड़े का पहनते, पहले लोगों को सोने चांदी हीरे मोती जड़ित वस्त्र पहनते थे। तो आज के समाज में लोग सोचते हैं आज कितना हम प्रगतिशील लोग है, लेकिन पहले जमाने के हम कहानी सुनेंगे, वैदिक शास्त्रों के कहानियों को देख, घटनाओं को देखेंगे, तो पता चलता है कि पहले के लोग कितना समृद्धिशाली थे, कि उनके वस्त्रों में भी सोना होता है, लेकिन हमारे लिए वो सपना हो गया है, सोना हम देख नहीं पाते हैं, लोग को सोने प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो महंगे महंगे वस्त्र और महंगे आभरण, अनेक प्रकार के आभरण पहनते थे, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब राजसूय यज्ञ किए युधिष्ठिर महाराज, और उसके कारण जब अर्जुन ने धन एकत्रित करने के लिए अनेक राज देश में गए, वहां उनको धन चाहिए था, तो भगवान ने उनको एक दिशा में भेजे जहाँ के लोग सोने के थाली में खाकर फेंक देते थे, और उस सोने को अर्जुन ने एकत्रित करके लाए थे। तो पूर्व काल में, पूर्व युगों में लोग ऐसे महंगे धातुओं से, कहा जाता है ये कलयुग जो है लोह युग है, तो यहाँ लोहे का प्राधान्यता है, यहाँ तक कि अब तो कलयुग का इतना पतन हो चुका है कि प्लास्टिक यूज होता है, और प्लास्टिक तक तो ठीक था, अभी क्या हो रहा है, पेपर यूज हो रहा है, सब जगह पेपर थर्मोकोल यूज होता है। तो हम देख सकते कितना पतन अवस्था में है ये कलयुग। तो ऐसे आभरण से, यहाँ तक कि हमारे पास
बड़े बड़े मंदिर बनाते, लोग के पास पैसा भी नहीं है कि भगवान को सोना चांदी पहना सके, और होने पर भी नहीं पहनाते क्योंकि हाँ आज की दुर्दशा ऐसा है कि चोर आ जाए। हाँ सक्षम है, कई मंदिर है जो सक्षम है कि वो धन को भगवान की सेवा में लगा सकते, लेकिन कई लोग, कई प्रकार के लोग होते धन को चुरा लेंगे। तो ऐसे आज की जमाने में ऐसे अनेक प्रकार की जो लोगों के पास धन की कमी है, तो जिसके कारण वो यहाँ तक कि बड़े बड़े करोड़पति लोग भी हाँ जो सुंदर सुंदर गहना नहीं पहन सकते क्योंकि उसके कारण कोई गला काट देगा ये भय रहता है। हम मूल्यवान कोई हीरे जवाहरात नहीं पहन सकते। इन पहले जमाने में छोटे लोग, छोटे गरीब होने पर भी उसके पास हाँ जैसे आज आज के गरीब होने पर भी झाड़ू वाला भी मोबाइल लेके घूमता है। हाँ उस समय एक गरीब लोग भी झाड़ू वाला भी उसके गले में अत्यंत मूल्यवान गहने रहते थे। तो इसी प्रकार जब नंद महाराज की, नंद पुत्र की जन्म का उत्सव हुआ, तभी सभी लोग वहां की ब्रज की सभी लोग अनेक सुंदर सुंदर, जैसे हम महोत्सव होने पर हम भी सज ढज कर हाँ अनेक प्रकार के, हमारा तो गहना कुछ नहीं है लेकिन हमारा गहना क्या है, तिलक है, तो हम तिलक को अच्छा से लगा कर आते हैं और अच्छा कपड़ा पहनते हैं प्रेस करके। हाँ तो महोत्सव जो है हमारे खुशी को बढ़ाता है। तो उसी प्रकार नंद महाराज की जो नंद पुत्र की नंद उत्सव हुआ, तो उसमें पूरे ब्रजवासी को खुशी की ठिकाना नहीं था के कारण वो खुद तो सजे थे अनेक गहना और वस्त्रों से, और साथ साथ हाथों में अनेक प्रकार की, कहीं हम जाते हैं आजकल की तो अलग बात है, लोग मंदिर भी आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। यहाँ तक कि शास्त्र कहता है कि जब भी गुरु देव हाँ राजा के पास जाए कुछ ना कुछ हाथ में लेके जाए, कुछ नहीं तो फूल तुलसी लेके आ जाए भगवान के लिए। हाँ फूल तो खरीदना नहीं पड़ता है, बॉम्बे में ठीक है खरीदते हैं तुलसी खरीदते हैं, लेकिन गांव में जो है फूल तुलसी खरीदना नहीं पड़ता है, ये सामान्य। भगवान के पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहम भक्ति उपहर्तम अस्नामी प्रियतात्मना। तो जिसके पास जैसे योग्यता है उनके अनुसार नंदोत्सव में सब लेके आए, तो गरीब लोग शायद फूल पुष्प भी लेके आए होंगे, महोत्सव में फूल भी सस्ता है। हाँ सब जैसे जिसका हैसियत था उसके अनुसार। हाँ तो ऐसे राजा के लिए अनेक प्रकार की, राजकुमार के लिए अनेक प्रकार के उपहार लेकर सब ब्रजवासी आ रहे थे, और यहाँ कहा गया है कि सुंदर वस्त्र पहने थे, और कहते हैं कि कुचक, कुचक यहाँ तात्पर्य इसका शब्दार्थ करते हैं कि वृंदावन के पहना जाने वाला विशेष वस्त्र। तो मैं और एक टीका में पढ़ रहा था तो वहां लिखा है कि जो कुचक का अर्थ है कुर्ता, तो वृंदावन में विशेष प्रकार के कुर्ता होता है, हमारा कुर्ता ऊपर से हम डालते लेकिन वो कुर्ता क्या बगल बंद होता है, ब्रज का कुर्ता अलग होता है, तो विशेष तरह की वस्त्र था। इस प्रकार पगड़ी उष्णी पगड़ी बांधे थे, तो जिसके हाँ कोई सोना चांदी लगा कर बांधा था, जिसका जो योग्यता था, इस प्रकार के अनेक प्रकार की अपने शरीर को भूषित करके पूरा सज ढज के आए थे लोग। हाँ क्रीम पाउडर लगाकर, लिपस्टिक वगैरह लगाकर माताएं सब आए थे, सब प्रकार के पूरी तरह से साथ सब, क्योंकि भगवान को खुश करना है तो भगवान के सामने भी कोई छोटे बच्चा है हाँ उसके सामने डरावना चेहरा बना कर आओगे तो वो डर जाएगा ना, तो भगवान छोटे हैं, तो सब लोग सज्जज के पूरे सभी देवी देवता के समान। यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जब चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार हुआ, चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए, तभी भी ऐसे ही, यहाँ तो नंद उत्सव था, वहां जगन्नाथ मिश्र उत्सव था, वहां भी अनेक प्रकार की देवी देवता यहाँ तक के आने लगे। हाँ नंद महाराज के भवन में भी भगवान को दर्शन करने के लिए अनेक देवी देवता आए, यहाँ तक के अंतिम में पूतना देवी का रूप धारण करके आ गए। तो इसी प्रकार ग्वाले अनेक प्रकार की दूध दही किसके ग्वाले हैं, अगर धन नहीं है राजा को देने के लिए, कोई दूध दही ले आया, कोई मक्खन ले आया घर में ताजा ताजा बना हुआ, कोई ताजा घी लेके आ गया दान देने, तो जिसका जो सक्षम था राजा को उपहार देने के लिए वो हाथ में लेके आए। तो पहले से ये ददाति प्रति घृणान्ति गोह्यम अक्षाति पुच्छति चल रहा है कि भगवान की प्रीति के लिए है, हाँ, या भक्त प्रीति के लिए क्या करते, आदान प्रदान करते। तो नंद महाराज ने भी जैसे दान दिए और दान भी स्वीकार किए, तो ये प्रीति लक्षण है, हाँ, उपदेशामृत कहता है। तो जहां भी महोत्सव होते हैं आदान प्रदान चलता रहता है, मंदिरों में भी हमारा, हाँ, लोग आके दान देते हैं और हम उनको प्रसाद देते हैं, तो ये भी हमारा दान है, तो ये कर्तव्य है। तो श्रीमद् भागवतम में जब दशम स्कंद में ही वर्षा ऋतु का वर्णन आता है, आप एक बुक पढ़े होंगे भागवत प्रकाश, लाइट ऑफ भागवत, हाँ, तो उसमें प्रभुपाद वर्णन करते हैं जिस प्रकार बादल होता है, बादल, हाँ, सूर्यदेव जो है वो धरती से पानी को सोखते हैं और फिर क्या करते हैं, अभी बहुत दिन से 2-3 महीना से, हाँ, सूर्यदेव पानी ले रहे थे, अभी आज ही बारिश हुआ, हाँ, तो बारिश के तौर पे वो फिर उसी जो लिए हुए पानी को लौटा दिए। तो इसी प्रकार जो राजा होता है उसको क्या करना चाहिए, दान कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए, और समय आने पर जब प्रजा की जरूरत आने पर उसी समय उस धन को वितरित करना चाहिए। तो आज के सिचुएशन भी ऐसा है, आज लोग के पास, हाँ, धन के अभाव है, क्यों काम नहीं कर रहे कोरोना के चलते, तो लोग आज भूख से मर रहे। तो आज राजा का कर्तव्य क्या है जो हमारे देश को संभाल रहे, तो लोग प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं कहीं लोग होते हैं घोटाले वाले, हाँ, चारा घोटाला भी हो, पशुओं का चारा खा लेते, मनुष्य का अनाज खाना दूर की बात, हाँ, तो आज के समाज में चारा घोटाला भी होता है, हाँ, चारा को भी वो पशु बन के खा लेते हैं। तो आज के समय में कुछ लोग हैं ऐसे दुराचारी लोग हैं कि वो लोगों का लिए, जो गरीब लोगों के लिए दान आता है उसको भी खा लेते हैं। तो राजा का कर्तव्य है कि दान देना और दान लेना कर के रूप में। तो नंद महाराज भी दान लिए भी और दिए भी। पहले जमाने में ऐसे राजा नहीं होते थे, आज के समाज में जो राजा है, हाँ, वो सोचते हैं मैं धन भर भर के शायद मरते टाइम लेके जाऊंगा, इसलिए सोच के रखे हैं। तो आज का समाज जो है लोगों में ज्ञान नहीं, अज्ञानता भरा हुआ है, जिसके कारण ऐसे, हाँ, गलत कार्यों में लगे हुए, लोगों की धन को और लूटने में लगे हुए। तो यहाँ तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन है कि जब हम देहात के खेतीहर की पुरानी दशा पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि मात्र कृषि उपज तथा गौवे की सुरक्षा के बल पर वह कितना समृद्ध थे। तो प्रभुपाद भी उपदेशामृत में एक श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो थोड़े से जमीन और कुछ गायों के द्वारा एक व्यक्ति अच्छा से जीवन व्यतीत करता कर सकता है, गायों के द्वारा अनाज उगाना है और जो अनाज से ही हम बच सकते हैं, गाय के दूध से ही हम घी दही दूध खाकर बचते हैं। तो आज के समाज में देखो जैसे प्रभुपाद कहते हैं इतना बड़ा बड़ा उग्र कर्म हो रहा है, यहाँ तात्पर्य में लिखा है उग्र कर्म, आज का समाज उग्र कर्म कर रहा है, सब बड़े बड़े फैक्ट्री खोल रहे हैं, बड़े बड़े मशीन लगा रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन में वो रियलाइजेशन हो सकता है क्या, आज सब शहर छोड़ के गांव भाग रहे हैं, क्योंकि उनको अभी पता चल रहा है कि शहर में तो हम नट बुल्ट नहीं खाएंगे, जो बनाए बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए उससे हमारा जो नट बुल्ट पैदा हो रहा है वो खा के तो जिंदा नहीं रहेंगे, अब क्या खाने के लिए क्या चाहिए, अनाज ही चाहिए। तो अभी सब क्या कर रहे हैं, गांव के ओर दौड़ रहे, सब शहर छोड़ के गांव जा रहे, ट्रेन नहीं है कुछ नहीं है फिर भी पैदल भाग रहे, हाँ, तो कितना महत्वपूर्ण स्थिति है, एक गाय और जमीन। आज जो खेतीहार लोग है वो गांव में सुरक्षित है, वो भूख से नहीं मरेंगे, लेकिन शहर में करोड़ रुपया बैंक में होने पर भी वो सूखा भूखा मर जाएंगे। वो करोड़ रुपया नोट, कागज का नोट या डॉलर जो सिक्का है उसको खाके तो जिंदा नहीं रहेंगे। अनाज कहाँ से आएगा? वो अनाज आएगा गांव से, जो किसान से आएगा, खेती से ही अनाज उगता है। तो कृषक जो है कृषि करके गोरक्षा के द्वारा ही आज समाज बच सकता है। बिना गाय और खेती से समाज में जीना मुश्किल है। अनाज कहाँ से आएगा? गाय के द्वारा ही खेती करोगे, गाय से ही दूध दही और कृषक। लेकिन आज लोग सब शहर भाग के आ रहे, उनको सब हल्का काम चाहिए। सब लोग सोचते हैं आराम से एसी में बैठकर धन कमाएंगे। गांव में खेती गर्मी में हल कौन चलाएगा, अनाज कौन उगाएगा? लेकिन पता नहीं, वही अनाज खा के ही हम जिंदा रहेंगे। यहाँ ऑफिस में बैठ के एसी खा के मरने वाले, यहाँ तक कि एसी में हमको कोरोना बढ़ता है बोल रहे। तो इसलिए जो गांव का जीवन है सुरक्षित जीवन है। यहाँ तक कि गाय के गो मूत्र और जो गोबर है वो हमारे लिए औषधि है। तो पहले जमाने में लोग इस गोमूत्र और गोबर से ही उनके औषधि के रूप में उसको शरीर में लगाकर, वो एंटीबायोटिक है। तो आज भी समाज में लोग वही वैदिक शास्त्र की औषधियों को ग्रहण कर रहे हैं, वही काढ़ा पी रहे हैं, हम लोग गर्म पानी पी रहे, हल्दी खा रहे बचने के लिए। हाँ, मरता क्या नहीं करता सिचुएशन ये। तो वैदिक शास्त्र, वैदिक शिक्षा जो है कृषि और गोरक्षा पर आधारित है। आप तलासरी गए हो गए, हमारा जो फार्म है उसके बाहर कुछ मंत्र लिखा है अनेक शास्त्र से गोमाता के ऊपर, तो मैं भी कुछ मंत्र का फोटो उठाया था, तो ये अभी बताता हूँ। मातरम सर्वभूतानम गाव सर्व सुखम प्रदह बुद्धि आकांक्षता नित्यम गावो कार्य प्रदक्षिणः। कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वे गो माता के देखे, उन्हें प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा करे। ऐसे करने से सप्तदीपो सहित समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। गाय सभी सबकी माता है, वे सभी को आनंद प्रदान करते हैं। समृद्धि की आकांक्षा रखने वाला लोग को प्रतिदिन गौ माता का माता की प्रदक्षिणा करना चाहिए। ये गौ उपनिषद की श्लोक है। तो जहां कहते हैं कि एक गौ माता को प्रतिदिन प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से, हमको प्रदक्षिणा करने से क्या होगा, हमको सभी देवी देवता की प्रदक्षिणा का फल और सप्त दीप सहित समस्त पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। तो गाय धरती माता को पृथ्वी के साथ भी तुलना किया गया है। तो आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम जब शुरू हुआ, कली का प्रवेश हुआ, कलियुग प्रवेश हुआ, तो जो पृथ्वी माता किस रूप में थे, गाय के रूप में थे। हाँ, तो जब भी आप देखे होंगे भगवान को प्रार्थना करने जाती थी पृथ्वी, तो वो गाय का रूप धारण करके जाते थे। तो इसलिए गाय का हमारा जीवन में, गौ माता का हमारा जीवन अत्यंत महत्व है। तो हमारे वो सब प्रकार की रक्षा करती है। आज के समाज में ऐसा स्थिति है कि गाय को ही कत्लखाना में भेजा जाता है, उस गौ माता को कत्लखाना में। यहाँ तक कि आज के जो राजा हैं, आज के राजा क्या करते हैं, उस गाय को काटने के लिए ब्लेड को धार बनाने के लिए डोनेशन देते। हाँ, सरकार के फंड से जाता है, क्योंकि उस गो के बद्ध से, गोमांस से उनका अनेक धन प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रभुपाद कहते हैं, जब तक इस धरती पे अगर एक भी बूंद गाय माता की रक्त पड़ता है, तब तक इस प्रकार की जो आज समाज में अनेक प्रकार की विपत्ति आ रहा है वो आते रहेगा, विपत्ति कभी नहीं बंद होगा। जब गोमाता की हत्या बंद होगी, गो ब्राह्मण हिताय चाहे भगवान हमारे, तो गाय और ब्राह्मण की खुशी से, हाँ आज देख रहे समाज में किस प्रकार की लोगों की दुश्चिंता है, साधुओं को हत्या कर रहे हैं, साधुओं को मार रहे हैं, जो साधु किसका बिगाड़ता नहीं है। हाँ, आज गायों की कत्ल हो रहा है, तो कैसे हमारे भगवान खुश होंगे ऐसे लोगों के ऊपर। तो वो उसी का कर्म फल है कि आज समाज में ऐसे नाना प्रकार की प्राकृतिक विपदा आ पड़ी है। आज लोग घर में पशु, जिस प्रकार पहले पशुओं को बांध कर लोग देखने चिड़िया खाने जाते थे, हाँ, तो आज पशुओं के कारण हम बन गए हैं और पशु ही बाहर घूम रहे। हाँ, वो देख रहे हैं हम कैसे हंस, वो हंस रहे हैं अभी। हम पहले पशुओं को देख के चिड़िया खाने में हंसते थे, अभी पशु हंस रहे हमको देख के, देखो कैसे बन रहे। हाँ, कोई वीडियो भेजा था, हाँ, एक कुत्ता बाहर जा रहा है, बोल रहे मालिक तुम्हारे लिए बिस्किट लेके आओ क्या। हाँ, पहले लोग जाते थे बाहर तो कुत्ते के लिए बिस्किट लेके आते थे, अभी कुत्ता बोलता है मैं लेके आता हूँ। हाँ, तो ऐसा परिस्थिति है। तो जो प्रभुपाद पुस्तक लिखे प्रकृति का नियम अभी सटीक बैठ रहा है, तो जैसी करनी है ऐसी भरनी है। आज समाज वही भोग रहा है, अपना ही कर्म फल को भोग रहा है। जो अनेक पशुओं को जातना दे रहा था, वही जातना अभी वो खुद पा रहा है। तो और कुछ श्लोक है, तो महाभारत भारत का एक श्लोक है, कहते दानानामपि सर्वेषां गाव दान प्रसास्यते गाव श्रेष्ठा पवित्रास्व पावनम हेत दुर्तमम। कहते हैं एक गांव का दान अन्य सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ है। गाय सर्वोच्च और पवित्र है, तो गाय दान भी जो दान लेते हैं सबसे गायों का दान, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि गायों का दान लेके उसका वध किया जाए। गाय किस लिए है? गाय का सेवा के लिए, गोमाता की सेवा के लिए हमको गाय दान देना चाहिए, जहां गोमाता की सेवा हो। लेकिन गाय खरीद के अगर हम कत्ल खाना में दान करें तो क्या होगा? नरक में जाएंगे। गायों के कहा जाता है कि गायों के शरीर में जितना रोम है उतने हजारों साल हमको नरक में वास मिलेगा। तो आज समाज, शास्त्र कहता है कि आजकल नरक भी फुल हो गया है, कि ऐसे लोग है, दो जगह ट्रैफिक ज्यादा है, हाँ, नरक और धरती लोक। यहां से लोग कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, एक तो नरक जाते हैं, नहीं तो इधर ही आके भोगते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वित्तस्व अधो गच्छन्ति तामसा। के ऊपर के लोग का जो गेट है वो बंद हो गया है, क्योंकि वो सात्विक कार्य में नहीं लगे हुए। तो आज दो लोक में ट्रैफिक जाम है, धरती लोक और कहा नरक लोक। लोग आज सत्गुणी कर्म नहीं कर रहे, तो वैकेंसी पड़ा है स्वर्ग उच्चतर लोक में। हाँ, स्वर्ग लोक खाली पड़ा है। तो समाज में आज सब पाप कर्म में, और सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है? ये गोमाता का वध। और एक श्लोक है, कहते हैं अग्नि द्रिय स्वरूपाये स्वरूपाये नमः वाचा वृत्ति प्रदक्षिण्य नमः आकार दीक्षकारतम त्वम वैखरी व स्वरूप नहा। कहते हैं गौ माता की सेवा करने से एवं गौ उत्पाद के उपभोग से जागरूकता और भगवान दोनों में बुद्धि होती है, सॉरी जागरूकता और भावना में, भावना दोनों में वृद्धि होता है। तो गौ माता की सेवा और गौ उपज जो गाय के द्वारा बने हुए वस्तुओं का हम लगाने से, शरीर में लगाने से, खाने से, तो हमारा जो चेतना शुद्ध होता है, चेतना जागरूक होता है, जो जागृत और भावना, और भावना शुद्ध, चेतना जो है हमारा शुद्ध होता है। तो ये सात्विक गाय से आने वाले जो वस्तु है वो क्या है? सात्विक वस्तु है। दूध, दही, घी, ये सब क्या है? सात्विक वस्तु है। तो सात्विक आहार, जैसे भगवत गीता में ही भगवान कहे कि सात्विक आहार, आहार जो है सात्विक होना चाहिए। आहार शुद्धि सतशुद्धि, सतशुद्धि दुभास्पति। तो शुद्ध आहार जो है गाय माता से मिल रहा है, और ऐसे आहार गाय माता से आई हुई जो वस्तु है वो दवा की तरह ही काम करता है, पंचगव्य। यहां तक कि उनकी मल और मूत्र में भी औषधि है। कोई पशु है ऐसा? इंसान को तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है, कोई उसका मल लेके लगाएगा शरीर में? हाँ, कल देखे होंगे हमारे प्रभु जी देव चंदन प्रभु व्हाट्सएप में बहुत फोटो भेजे हैं, हाँ, तलासरी का, कि भक्त लोग पूरा गौमूत्र और गाय का गोबर पूरा शरीर में लगाए, कोई लगाएगा ऐसा? हाँ, मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी कहते हैं, उसका मल कोई लेके लगाएगा शरीर में? हाँ, उससे उसको लगाएगा तो क्या होगा? बीमारी आ जाएगा। देखिए गौ माता की गोबर और गौमूत्र इतना शक्तिशाली है कि हमारे शरीर में, संसर्ग में आने से चित्त और मन और शरीर सबको शुद्धि कर देता है। जिस प्रकार हमारे भगवान, हाँ, कि ईश्वर संसर्ग में आने से, हाँ, यहां तक कि भगवान के नाम के संसर्ग में आने से व्यक्ति का चित्त शुद्धि हो जाता है, शरीर शुद्धि हो जाता है। हाँ, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्ववस्था गतो विवा यह स्मरे पुंडरी काख्य स्वाह्य अभ्यंतर श्रुति। खाली भगवान पुंडरी काख्य की स्मरण करने से अंदर और बाहर शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार कोई अगर गौ माता का स्मरण भी कर ले, उससे उसका चित्त शुद्धि हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार भगवान के नाम लेने से ही हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। अगर कोई भगवान का नाम ले, लेकिन सुबह सुबह उठ के गौ माता का ही नाम ले ले, गौ माता का ही प्रणाम कर ले, तो अभी भी उसको सभी देवता की प्रणाम का फल, सभी देव भगवान और सभी देवता की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। गोलोक, भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक में। हाँ, गायों के लोक में वास करते हैं। हाँ, ना कि जुहू लोक या क्या बोलते हैं, हीरानंदानी लोक या लोखंड वाला लोक, बड़े बड़े जो जगह है ऐसे लोक में नहीं रहते। भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक में। वो गोलोक में रहना पसंद करते हैं भगवान। तो इसलिए जो भगवान को चाहता है, भगवान के पास जाना चाहता है, गोलोक भी जाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? उस गो को ही स्मरण करना पड़ेगा। जब हम गो को स्मरण करेंगे, गोलोक स्वतः चला जाएंगे। तो भगवान, जैसे कहा गया है, आराधनम अपि सर्वेशम विष्णु आराधन परम तदियम परतर देवी तद भक्ता समर्चनम। शिव जी कहे कि सभी से आराधना बढ़कर क्या है? विष्णु आराधना परम, भगवान विष्णु की आराधना करना। लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है? तदियम, तदीय वस्तु, भगवान की तदीय वस्तु। तदीय वस्तु क्या है? तुलसी महारानी, गौ माता, भक्तजन, वैष्णव जन, ब्राह्मण, ये सब भगवान की तदीय तदीय है। तदियम समर्चनम, अगर आप भगवान किससे खुश होते हैं? भक्तों की सेवा से। तो भगवान की भक्त है गोमाता भी, वृंदावन में गोमाता भी भगवान की सेवा करते थे। भगवान की लीला में कैसे अनेक प्रकार की सेवा की है भगवान की। तो इसलिए भगवान के, जैसे श्रीमद् भागवतम में कहते हैं भगवान के, अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र ही दीज साधुरी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय, कि भगवान भक्त के प्रिय है, भगवान भक्त के अधीन है। तो गौ माता की जो सेवा करता है उसको भगवत कृपा प्राप्त होता है। तो गौ सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा है समाज में। अगर कोई गौ सेवा करता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होता है। तो यहां देख सकते हैं तात्पर्य में लिखा है कि पहले जमाने में लोग खाली गौ और खेती के द्वारा इतने समृद्धशाली होते हैं थे, आज भी है ऐसा नहीं है। आज भी गांव में चले जाओ, बड़े बड़े जमींदार के देखो, उनका जमीन होता था और खेती करते थे लोग रखकर। खेती करके वो इतना धन रहता था कि इतना धनवान होते थे कि खेती के द्वारा उनका अजस्र धन होता था। वो गहना पहनते थे, हाँ आजकल के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास भी ऐसे धन नहीं होता था। नंद महाराज की ले लो, 9 लाख गाय थे। तो ऐसे गायों का दान भी दिए कि सोना चांदी लगाकर उनमें अनेक जेवरात से सजाकर गायों को ब्राह्मण को दान दिए। तो इस प्रकार गाय और खेती जो है महत्वपूर्ण है। आज हमारे प्रभुपाद जी ने भी हमको बता के गए कि हमारे जो संस्था में है जो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो होना चाहिए, दैवी वर्णाश्रम धर्म। तो बहुत से हमारे जो इस्कॉन के बहुत से फार्म हाउस है, गौशालाएं हैं जहां गोमाता की सेवा होती है। तो ये जो गोमाता की सेवा है ये भी हमारा एक भक्ति का एक अंग है। तो जब हम गोमाता की सेवा करते हैं तो कहते हैं खाली हमारे हाथ अगर गोमाता के ऊपर फेरते हैं तो हमारा कई प्रकार की रोग हो जाता है, हमारा लोग के ऊपर ग्रह लगता है। हाँ, किसको शनि पकड़ा, किसको रवि पकड़ा, राहु पकड़ा, तो हाँ कोई बाबा के पास, कोई ब्राह्मण के पास हाँ अपना ग्रह निकालने जाते हैं। तो शास्त्र कहता है खाली गौ माता के शरीर पर हाथ फेरने से हमारा सभी ग्रह नष्ट हो जाता है। गौ माता की शरीर पर हाथ घुमाने से हमारा सभी प्रकार की रोग नष्ट हो जाता है। यहां तक कि गौ माता के आप प्रार्थना करो आपको जो चाहिए मिलेगा। इसलिए काम देनो गौ माता क्या है, लक्ष्याभृतेषु सुरभिर विपालयन्तम्। भगवान की लोक में कौन रहता है, सुरभि गाय। हाँ, आप श्रीमद् भागवतम में और अनेक शास्त्र में पढ़े होंगे कि सुरभि गाय के बारे में कि उनके पास जो इच्छा करोगे। यहां तक कि कामधेनु गाय का भी उदाहरण आता है शास्त्र में कि इच्छा करने से। जब सहस्त्र बाहु अर्जुन गए थे, ऋषि के नाम याद नहीं आ रहे, उनके पास गए तो उनके सैन्य को के लिए अनेक प्रकार के भोजन गौ माता ने दान दिया। तो पता चला ये कहां से आ रहा है, इतना ये तो साधु है, हाँ पोकटराम कुछ नहीं है इसके पास, हाँ जंगल में रह रहा है, लेकिन मेरे इतने सैन्य को कहां से खिला रहा है। तो पता चला कि नंदिनी गाय है, तो वो जो चाहिए देता है। तो राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन सोचे ये इनके पास होना नहीं चाहिए, तो मेरे पास होना चाहिए। तो उन्होंने उसको छीन के लिया, अभी ये जमदाग्नि के पास थे। तो क्या हुआ, फिर भगवान परशुराम ने उनके सभी पुत्रों को वध किया और उनको वध किया उस गाय को लेकर आए। इसलिए गौ माता का हमारे शास्त्र में अनेक प्रकार के वर्णन है कि गौ माता के होने से खाली कोई अगर सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो प्रभुपाद कहते हैं यही है। सिंपल लिविंग मतलब गौ और कुछ जमीन से हम अच्छे से रह सकते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार। इस प्रकार से सादा जीवन बिताना है और उच्च विचार क्या है, भगवान की भजन करना, ये उच्च विचार है। लेकिन आज के समाज में उल्टा है, सबके विचार क्या है, निम्न है। जैसे जो बाज होता है उड़ता है अनेक ऊपर, लेकिन उसका नजर कहाँ रहता है, नीचे, सबके ऊपर, कहाँ सब है खाऊं। तो ऐसे आज की लोगों का चेतना जो है इतना दूषित हो चुका है, उनका जीवन में विचार तुच्छ विचार है, उच्च विचार नहीं है, तुच्छ विचार है। और जीने का शैली क्या है, बहुत थर्ड बात में जीते हैं। लेकिन ऐसे थर्ड बात की जिंदगी से क्या होगा, वो कहां दुखी पाएंगे। अभी जी रहे थर्ड बात से, हाँ बहुत उपभोग करके जी रहे थे लोग, बहुत घूम रहे थे BMW में या फ्लाइट में, लेकिन अभी लॉकडाउन, हाँ अंदर ही, तो अभी पीड़ित हो रहे। ये थर्ड बात की जिंदगी उनका अब बेकार हो गया। लेकिन गांव के लोग देखो, हाँ पहले भी खुशी है, अभी भी खुशी है। गांव में जाओ, पहले भी घर पे रहते थे और खेती करके गुजर बसर करते थे, अभी भी वो उनका चल रहा है। लेकिन शहर की जीवन अभी ठप पड़ा हुआ है, गांव का जीवन ठप नहीं है, गांव में चल रहा है सब, खुशी खासी चल रहा है, गो सेवा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अनाज भी है घर में, कोई चिंता नहीं अनाज का। हाँ आज शहर में लोगों का अनाज खत्म हो गया तो फिर दुकान खुला है कि नहीं, उन दुकान के भरोसे, अभी दुकान में अनाज है कि नहीं वो भी, हाँ डर है कि कोरोना ना आ जाए उसके साथ। हाँ तो ऐसे दशा है लोगों का आज समाज में। तो गांव का जीवन जो है सरल जीवन है, लेकिन शुद्ध जीवन है। और वही, लेकिन आज हम सब गांव छोड़ के शहर आ गए, गांव जाने के लिए तकलीफ हो जाता है। लेकिन शुद्ध जीवन एक ही है, क्या है, गांव। तो आज हम यहाँ कष्ट में, लेकिन हमारे भक्त लोग तलासरी में आनंद में, वहाँ सब खेती में सब्जी उगा रहे हैं, आम खा रहे, तालाब में नहा रहे, लेकिन हम इधर लॉकडाउन है। ठीक है, फिर भी हमारा कोई चिंता की बात नहीं है, हम तो बाहर लोग से बेटर है, हमारा जीवन भगवान की सेवा में है, हाँ मंदिर में है, खाना पीना हमको अच्छे से मिल रहा है, ये भगवत कृपा है। लेकिन बाहर की गरीब लोग देखिए क्या दशा है, खाना नहीं है, खाने के लिए रो रहे, देखो दुर्दशा क्या है। जो ऑटो चला रहे थे उनके पास पैसा नहीं, जो पैसा कमाए थे खत्म, बड़े लोग तो जी रहे, उनके जो पैसा है खा रहे, लेकिन गरीब जो बचा कुचा पैसा था अभी खा लिया, क्या खाएगा। लेकिन गांव में ये दशा नहीं है, गांव में क्या है, अगर कुछ नहीं है घर में, खेती करो, हाँ दो बैगन का पेड़ लगाओ, बैगन आ गया, हाँ भरता बनाओ खा लो। लेकिन अभी शहर का लोग को बैगन का भरता खाना है तो कहाँ पेड़ लगाएगा, सब तो कंक्रीट है। तो बाहर के गांव के लोग को चिंता नहीं है, खेती है, गाय है, हाँ कुछ नहीं मिला, अगर खेती में कुछ नहीं मिला, गौ माता है, दूध पी लिया, इधर क्या पिएगा, हाँ तो ओ शराब पिएगा। यहाँ शहर में शराब का दुकान खोल रहे गवर्नमेंट, तो शराब की पी के क्या करे, मरेगा, जीवित तो नहीं हो पाएगा। शराब के अड्डे में न्यूज आया, शराब खोल दिया शराब का दुकान, तो लोग लाइन लगा दिए, तो क्या हो गया, कोरोना बढ़ गया। लेकिन गांव में ऐसा स्थिति नहीं है, गांव में सब कंट्रोल चल रहा है सब। लेकिन गांव में अभी ऐसा हो रहा है कि शहर वाले लेके दे रहे, हाँ लेकिन फिर भी सुरक्षित जीवन है, भूखा कोई नहीं मरेगा गांव में, क्योंकि उनके पास क्या है, गाय और जमीन। तो गौ माता के द्वारा खेती करो, गौ माता का द्वारा आया हुआ दूध दही माखन घी खाओ, और खेती से उगा हुआ अनाज सब्जी खाओ, और जीवित रहो, और राम नाम गाओ। लेकिन शहर के लोग अभी उनको चिंता, अभी मुख में राम नाम नहीं आएगा, चिंता है कैसे खाऊं, कैसे जीवित रहूं, अनाज खत्म हो गया, कैसे अनाज आएगा, दुकान बंद है, हाँ अरे दुकान बंद के पास ही आया नहीं अनाज, तो क्या होगा। तो इसलिए जो गांव का जीवन है, जो कृषि और गोरक्षा पे आधारित है, वो समृद्धशाली जीवन है। तो ऐसे जीवन में जो था ब्रजवासियों का था, तो इतने समृद्धशाली थे गो और कृषि से कि उनके पास गहना खाना पीना में कोई कमी नहीं था। तो आज लोग सोच रहे ये तो गांव का जीवन है, थर्ड क्लास जीवन है, लेकिन यही जीवन अच्छा जीवन है। तो आज भी कोई अगर सटीक ढंग से कुछ खेती और गोरक्षा करके, आज बहुत से हमारे भक्त भी है और अनेक लोग भी है जो गो प्रेमी है और कृषि प्रेमी है, वो लोग ऐसे ही जीवन बिता रहे, उनके पास कोई कमी नहीं है। अरे जीने के लिए यही तो चाहिए, खाना और खाना पीना चाहिए, वो तो गो और जमीन से मिल रहा है, तो इसी से हमको सब प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा प्रयास चल रहे है, बड़े बड़े जो हमारे इस्कॉन के भक्त लोग है, बड़े जमीन ले रहे हैं, खेती कर रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं, जिससे क्या होगा आगे जाके, हाँ हम भी भूखा नहीं रहेंगे, हमारा राजबिहारी को भी कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। ऐसे तो वो उस जगत को खिलाते हैं, उनको कौन खिलाएगा, वो उनके शरण में जो है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। इसलिए हमारा जो खेती से देखिए इतना फूल आ रहा है, सब कुछ खेती से ही आ रहा है, अनाज आ रहा है, सब्जी आ रहा है राजबिहारी के लिए, तो कहाँ से आ रहा है, खेती से दूध आ रहा है। अगर हमारा गौशाला नहीं होता, सोचो हमारा कैसा मंदिर में हम जो दूध पी रहे रोज, हाँ हल्दी डाल के, हाँ इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे, रोग प्रतिरोधक कैसे बढ़ता। तो हमारा गौशाला है जिसके कारण ये सब प्राप्त हो रहा है, नहीं होता तो कहाँ से प्राप्त होता, पाउडर का दूध या केमिकल का दूध मिलता, उससे पीकर हम बीमारी पड़ते और बीमार हो जाते। इसीलिए शुद्ध तरीका यही है गाँव का जीवन। तो ब्रजवासियों की जीवन जो है समृद्ध भी है और स्वस्थ भी है। तो इस श्लोक से हमको तात्पर्य से ही शिक्षा मिलता है कि किस प्रकार गो और गाय जमीन हमारे लिए कितना, शरीर भी बना ही मिट्टी से ही और मिट्टी में ही मिलेगा, तो मिट्टी का ही आया हुआ वस्तु ही हमारे शरीर में जाएगा, लोहा चांदी सोना या प्लास्टिक खाकर जीवित नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमको गो और खेती पे विशेष हमको ध्यान देना है। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंदे।